நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயரியாணம் நமோ வஜ்ஜாயாணம் நமோ லோயே சவ்வசாஹூணம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கோதமோகணி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜெயின் தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வமங்கலமாங்கல்யம் சர்வக்ல்யாணகாரிகம் பிரதானம் சர்வதர்மாணாம் ஜெயினம் ஜயது சாஸனம் ஜெயினம் ஜயது சாஸனம் நமயோன் ஜிணம் வீரம் அனந்தவர்ணான் தன்சன் சஹாவம் கோச்சாமிணியம் சாரம் கேவலீ ஸ்ருதி கேவலீ பணிதம்.
பகவான் மகாவீர் சுவாமி கா நிர்வாண கல்யாணக் திவஸ் ஹே. இஸ் வர்த்தமான் சௌவீசி கே அந்திம் தீர்த்தங்கர் ஜின்கே சாசன் கால் மே அப்பன் சல் ரே ஹே. அபி அபி பகவான் மகாவீர் சுவாமி கா சாசன் கேலாதா ஹே நா. तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी के इस वीतरागी शासन में अपन लोग चल रहे हैं और आज ऐसे भगवान महावीर अपनी साधना की चरम स्थिति को प्राप्त हुए, यानी अभी तक वे मार्ग और मार्ग फल, तो अभी तक क्या था कि 14वें गुणस्थान तक मार्ग कहा जाता है, आ गया, और 14वें गुणस्थान का अंत हो गया, माने गुणस्थानातीत सिद्ध दशा उनको प्रकट हो गई, तो ये उनको मार्ग फल प्रकट हुआ। और आज ही के दिन भगवान महावीर स्वामी की सभा में जो प्रमुख गणधर इंद्रभूति गौतम थे, जो अभी तक मुनि दशा की साधक दशा में वर्तमान विराजमान थे, इधर सुबह भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कल्याणक हुआ और उधर शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ये कैसा विचित्र संयोग होगा, जरा अपन विचार करें कि आज का दिन प्रसन्नता का दिन है या थोड़ा अपने लिए पीड़ा का दिन है। दो बातें हैं, लगातार सोचो, 30 वर्ष से भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिर रही हो और उस दिव्य ध्वनि में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात संसार की 4 गतियों में से 3 गति के जीव, कौन सी गति के जीव नहीं आते थे, नहीं आते थे, अब सोच लेना, कहना इशारे में बहुत कह दिया है कि यदि हमें जिनवाणी सुनने का परिणाम नहीं आता हो, स्वाध्याय का, चिंतन का, मनन का परिणाम नहीं आता हो, तो हम अभिप्राय में भाव नारकी हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है, क्योंकि 3 गति के जीव तो भगवान के समोसरण में आते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं ना? तो अभी सोचो जरा कि उन 30-30 साल से वो लोग भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने आ रहे थे। भगवान का विहार होता था तो जहां विहार होता था वहां के लोग भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आते थे, और सारा जगत इस चैतन्य की चर्चा वार्ता से एकदम आह्लादित था, है ना? और एकदम जब भगवान की वाणी रुकी, माने दिव्य ध्वनि खिरना बंद हुई, तो दिव्य ध्वनि के सुनने का लाभ नहीं मिला, लेकिन भगवान के दर्शनों का लाभ तब भी लोगों को मिलता था। दिव्य ध्वनि बंद हो गई ना एक दो दिन पहले, लेकिन भगवान के दर्शन बाहरी रूप से भगवान के दर्शनों का लाभ मिलता था, तो लोग भगवान के दर्शन करके ही संतोष धारण करते थे कि चलो भगवान की वीतराग मुद्रा ही हमको तो मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रही है। लेकिन आज का ये दिन कि जब भगवान की वाणी गई, भगवान के दर्शन भी गए और भगवान निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो गए, तो भगवान के लिए तो ये बहुत ही समझ लो आनंदकारी प्रसंग हुआ कि उन्होंने जिस लक्ष्य से, पूर्णता के लक्ष्य से जो उन्होंने शुरुआत की थी, उस पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत का फल आज उनको पूर्णता की प्राप्ति हो गई। लेकिन अपन लोगों के लिए क्या हुआ कि अपन लोग बड़े मायूस कि भैया आप तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं, भगवान के दर्शन भी नहीं, अब हमारा क्या होगा, है ना। तो इधर हम मायूसी की स्थिति में जी रहे थे और उधर शाम को ही कि घबराते क्यों हो, भगवान महावीर मोक्ष पधारे हैं ना, तो भगवान महावीर मोक्ष का उत्तराधिकार देकर के गए हैं और भगवान महावीर के उस मोक्ष के उत्तराधिकार को गौतम गणधर ने संभाला। ये परंपरा कितनी गजब की चलती रही कि गौतम गणधर को निर्वाण हुआ, सुधर्माचार्य केवल ज्ञान लेके तैयार, सुधर्माचार्य को निर्वाण हुआ, जम्बू स्वामी निर्वाण को लेकर केवल ज्ञान को लेकर के तैयार। इस तरह यह अनुबद्ध केवलियों की परंपरा चली। बाद में केवल ज्ञान का वियोग हुआ तो केवल ज्ञान का वियोग होने पर द्वादशांग के पाठी शुत केवली भगवंतों का, मुनि भगवंतों का इस भरत क्षेत्र में अपने को सौभाग्य मिला और यह भरत क्षेत्र अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहू के बाद द्वादशांग के पाठी श्रुत केवलियों से भी रहित हो गया। देखो काल का प्रवाह कितना तेज तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। बाद में द्वादशांग के पाठियों का अभाव हुआ, लेकिन कोई 11 अंग के पाठी, कोई 10 अंग के पाठी, ऐसे होते 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 अंग पूर्व का ज्ञान भी क्षीणता को प्राप्त हो गया और ये परंपरा अभी तक उपदेश, भगवान महावीर के उपदेश की परंपरा उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को प्रदान की और उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान की, ऐसे करते 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 मौखिक रूप से वो जिनेंद्र देव की वाणी की परंपरा का मार्ग चल रहा था। दर्शन स्वामी हुए और उन्हें इस बात की चिंता हुई कि ये ज्ञान तो क्षीण होता जाता है और यदि अब इस ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ियों को जिनवाणी मिलेगी नहीं। और उन्होंने अपनी चिंता को दक्षिण देश में एक मुनिराजों का सम्मेलन हो रहा था, बहुत बड़ा, सारे बहुत सारे मुनिराज इकट्ठे हुए थे वहां पर और सभी मुनिराज परस्पर में, तो उन्होंने अपना एक पत्र वहां पर भेजा और उस सम्मेलन से दो मुनि आचार्य भगवान ने, वहां के आचार्य भगवान ने दो मुनियों को पात्र जानकर कि ये धर्मसेन स्वामी के द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सर्वथा पात्र हैं, उन दो मुनिराजों को वहां पर भेजा। तीन दिन तक आप सोचना जरा, उसी दिन वो मुनिराज आने वाले थे और धर्मसेन आचार्य को स्वप्न आया, दो बेल आ रहे हैं, ऐसा प्रवेश किया, ऐसा स्वप्न आया और आने के बाद वो मुनिराज आए, उन्होंने उनको नमस्कार किया, लेकिन तीन दिन तक धर्मसेन स्वामी ने उनसे कोई बात नहीं की। सोचना जरा, ये क्यों नहीं की, कि ये भी उनकी पात्रता की परीक्षा ले रहे थे वो, कि अधीर है कि धीर है, अपन को कोई बुलावे कि भाई साहब आपको आना है ना, हम अपन चर्चा करेंगे, आपको आना है, ठीक है, और अपन एक घंटा बैठे, एक घंटा बैठे रहे अपने से बात ही नहीं करे भला आदमी, तो अपन क्या कहेंगे, कहेंगे मैं फालतू हूं, तुम ही काम वाले हो, मेरे पास कोई काम नहीं है। दो घंटा हो जाए, तीन घंटा हो जाए कि भैया मैं तो चला, फालतू नहीं हुई इतना, ऐसा हो जाता है। मुनिराज ने तीसरे दिन जब कहा कि प्रभु हम इसलिए आए हैं, तो दर्शन आचार्य का अच्छा 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 अच्छा, और मंत्र साधना की जो उनको दिया, उनकी बुद्धि की परीक्षा हुई, वो सारी लंबी कहानी है। और उनको उन्होंने ज्ञान ज्ञान कराया, सिखाया, और उन्होंने ये सर्वप्रथम षटखंडागम धवला षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। वो पहला शास्त्र था जो इस युग में लिपिबद्ध हुआ। इधर षटखंडागम की रचना हो रही थी दर्शन स्वामी के माध्यम से, उनके निमित्त से पुष्पदंत भूतबली ने रचना की, और इधर गुणधर सूरी की परंपरा में द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना भगवान कुंद आचार्य के द्वारा हो रही थी। थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, मैंने षटखंडागम यानी जीव और कर्म की व्यवस्था कैसी है, माने आगम भाषा का प्ररूपक ग्रंथ। कुंद आचार्य देव को यह विकल्प आया कि आगम की आगम ग्रंथों की रचना तो हो चुकी और जीव आगम के अभिप्राय से भी परिचित तो हो जाएंगे, लेकिन आगम का सार तो अध्यात्म है। अगर अध्यात्म आगम में से अध्यात्म नहीं निकाला गया, यद्यपि आगम में अध्यात्म होता है, लेकिन आगम में से अध्यात्म निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि अपन पोस्ट ऑफिस में गए और अपन ने उस डाकिये से कहा कि भैया हमारी कोई चिट्ठी आई है क्या, हमारी कोई डाक आई है, और वहां पे 2-5 हजार डाक पड़ी हो, पत्र भी पड़े हो, पार्सल पड़े हो, सब हो, कि भाई साहब आई तो है, देखी तो है मैंने, आपका नाम उसमें देखा तो था, लेकिन अभी छंटनी नहीं हुई है। अरे भाई हमको तो अभी एक घंटे बाद हमको निकलना है, वो तो अर्जेंट डाक है, कि साहब ये डाक रखिए आप छांट लो, मना तो किया नहीं आपसे मैंने। एक तो वो, और एक वो कि सारी डाक छट जावे और छटने के बाद वो डाकिया ला करके अपने हाथ में अपनी चिट्ठी या अपनी डाक दे देवे। सरल उपाय, सरल मार्ग कौन सा है, बोलो साहब कौन सा मार्ग सरल है। और 5,000 की चिट्ठियों में से, 5,000 चिट्ठियों में से अपनी चिट्ठी छांटना सरल है कि वो छटी छटाई चिट्ठी ला करके अपने को मिल जाए, वो सरल है, कौन सा सरल है। आ गया, इसी तरह षटखंडागम आदि आगम ग्रंथों में से अध्यात्म निकालना, अध्यात्म नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्यात्म के बिना तो कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता, लेकिन उनका उनमें से अध्यात्म निकालना माने ढेर में से अपनी चिट्ठी छांटने जैसा है। आ गया, और ये भगवान कुंद आचार्य देव ने जो अध्यात्म ग्रंथों की रचना की कि ये बिल्कुल छटी छटाई डाक लाकर के अपने हाथ में लाकर के दे दी, अरे तू तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, ये काम हुए। और ये काम भगवान महावीर की उसी शासन परंपरा में हुए कि जो 42 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान को उपलब्ध किया और 30 वर्ष तक लगातार इस भारत भूमि पर विचरण करते हुए उन्होंने जिस अध्यात्म ज्ञान का, जिस आत्म ज्ञान का, जिस तत्व ज्ञान का उन्होंने अपने को यह संदेश दिया, उनकी वाणी में जो संदेश आया, उसी संदेश को उनकी परंपरा में हुए आचार्य भगवंतों ने, उनकी परंपरा में हुए विद्वानों ने, उनकी परंपरा में हुए ज्ञानी जनों ने अपने उपदेशों से और अपनी लेखनी के माध्यम से आज तक जीवंत रखा। अब दायित्व तो अपना है कि जैसे भगवान महावीर अपना उत्तराधिकार गौतम गणधर को, ये परंपरा चली कि नहीं चली, तो इसी तरह ये परंपरा चलते 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 इस जिन शासन का उत्तराधिकार वर्तमान में हमारे सौभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री को मिला, समझ में आ गया। और पूज्य गुरुदेव श्री ने भगवान महावीर स्वामी के इस शासन को 45 साल तक अनवरत उपदेश की परंपरा से सारे जगत को वो तत्वज्ञान पिलाया जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया था। एक विशेषता गुरुदेव श्री के जीवन में रही कि ना तो भगवान महावीर ने कुछ लिखा और ना गुरुदेव श्री ने ही कुछ लिखा। भगवान महावीर ने बोल करके जो क्रांति की, अपनी दिव्य ध्वनि से जो क्रांति की, हमारे गुरुदेव ने भी अपनी वाणी के माध्यम से वो क्रांति की और एक तरह से अपने को भगवान महावीर के युग में उन्होंने खड़ा कर दिया कि जिस समय इस भरत भूमि पर चौथा काल वर्त रहा था, जिस समय इस भरत भूमि में भगवान की वाणी खिर रही थी, आज हमें गुरुदेव श्री के प्रताप से उसी काल के दर्शन होते हैं कि मानो हम भी चौथे काल में ही बैठे हों, मानो हम भी उस विदेह क्षेत्र के वैदेही वातावरण में अपन लोग बैठे हों। ऐसे युग में गुरुदेव ने अपने को पहुंचा दिया तो अपन लोगों का दायित्व, क्योंकि गुरुदेव का ये तत्व ज्ञान, गुरुदेव श्री ने जो भगवान महावीर का ये तत्व ज्ञान अपन लोगों को दिया, तो अपन लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कि एक तो उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में परिणमन कराने की जिम्मेदारी, और वो सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक हम परिणमन नहीं कराएंगे तो दूसरों को परिणमन कराने की बात करना वो केवल बात होगी। तो उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में परिणमन कराने की जिम्मेदारी, और दूसरी उस तत्व ज्ञान को आगामी पीढ़ियों तक हम कैसे सुरक्षित रूप से पहुंचाएं, यह भी एक हमारा उत्तरदायित्व है। क्योंकि आप कल्पना करो, भगवान महावीर स्वामी के बाद, आज भगवान महावीर स्वामी को लगभग 2500 वर्ष हो गए, 2050 वर्ष हो गए मोक्ष गए हुए, बराबर, और 20 साल की एक पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी 20 साल की मानते हैं, तो 100 साल में 5 पीढ़ियां निकलती है, तो 2500 का हिसाब लगा लो कितनी हजार पीढ़ियां हो गई, लगा लेना 12500 पीढ़ी हो गई ना। तो 12500 पीढ़ियों ने ऐसी गलती नहीं की कि जो तत्व ज्ञान वीतरागी परमात्मा की परंपरा से चला आ रहा था, उन्होंने उस तत्व ज्ञान को आगामी पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से नहीं पहुंचाया हो, ऐसी गलती एक भी पीढ़ी ने नहीं की है। और अगर एक भी पीढ़ी यह गलती कर देती, एक बार भी इस तत्व ज्ञान के प्रवाह में ब्रेक लग जाता, तो ये तत्व ज्ञान आज आप और हम तक नहीं पहुंच सकता था। तो तत्व ज्ञान की आराधना, और तत्व ज्ञान की आराधना का एकमात्र उपाय कि निरंतर अपने जीवन में स्वाध्याय को स्थान देना, उसके बिना कुछ नहीं होगा। अभी गुरुदेव श्री की बहुत बढ़िया बातें आ रही थी, गुरुदेव श्री के प्रवचन में अपन लोगों ने सुनी कि भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं। अभी अनंत गुण, फिर उन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि आकाश ना प्रदेश करता अनंत गुण छे, कही थी आया। अभी अब आकाश के प्रदेश करता अनंत गुण छे ये तो कही, लेकिन उसके पहले कितनी बात है जो अनकही है, शॉर्ट फॉर्म में कही है वो आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणा। मतलब क्या मतलब का? आकाश के प्रदेश, यानी शुरुआत कहां से करेंगे? तो ये आता है गुरुदेव के प्रवचनों में आता है कि विश्व के अंदर अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। और जीवों से अनंत गुणे अधिक पुद्गल द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्यों से अनंत गुणे अधिक तीन काल के समय हैं, तीन काल के समयों से अनंत गुणे अधिक आकाश के प्रदेश हैं, और आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे अधिक भगवान आत्मा में, यानी प्रत्येक द्रव्य में गुण है। बात तो कही आकाश के प्रदेश से करता अनंत गुणा छे, पर आकाश के प्रदेश तक पहुंचने की कितनी स्टेप है, क्या इतना लंबा विस्तार बार बार ज्ञानी नहीं करेंगे। कहीं एक बार उनने वो बात कह दी तो बार बार लंबा विस्तार नहीं करके संक्षिप्त भाषा में काम चलाएंगे, और अपने को वो पूरा विषय ख्याल में आना चाहिए। अभी अपने को विचार आया कि एक बार एक और आचार्य देव ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा अपने को इतने इतने अनंत गुणों का भंडार कह रहे, और उसके लिए गुरुदेव सिंह ने एक प्रयोग एक वाक्य और कहा था, चैतन्य रत्नाकर है आत्मा। क्या शब्द का प्रयोग किया था? चैतन्य रत्नाकर है। क्या मतलब? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये रत्न है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? कि ये रत्न है। अपने को लगता है रत्न है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न लगते हैं? जरा विचार कर लेना, अपने अपने परिणामों का सबको करना है, किसी को छोड़े किसी को छोड़ता नहीं है। जैन दर्शन यहां भगवान की लियाज नहीं होती है। अपने को ये रत्न लगते हैं कि वो धूल पत्थर वो रत्न लगते हैं? अपने को क्या रत्न लगते हैं जरा विचार करना, सोचना जरा, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो रत्न है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के फल में क्या प्रकट होता है? भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो मार्ग के फल में क्या प्रकट होगा? मार्ग के फल में मार्ग का फल प्रकट होगा, माने मोक्ष प्रकट होगा। तो अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न है, तो उनके फल में प्रकट होने वाला मोक्ष वो क्या हुआ? कि वो महारत्न हुआ। क्या हुआ वो? कि महारत्न हुआ। और भाई साहब, अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के फल में प्रकट होने वाला मोक्ष महारत्न हुआ, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और वो उनके फल में प्रकट होने वाला मोक्ष जिस चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है, और जिस चैतन्य में ऐसी मार्ग और मार्ग फल की अनंत 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 पर्याय विद्यमान है, जो अपने काल क्रम में निरंतर अनंत काल तक प्रकट होती रहेगी, जिनका अब कभी अंत नहीं आएगा, ऐसी निर्मल पर्यायों का पिंड, ऐसे अनंत गुणों का पिंड, उस चैतन्य परमात्मा को क्या कहना? कि उसको तो महा महा महारत्न कहना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न है, मोक्ष वो महारत्न है, और उसका भी कारणभूत शुद्धात्मा महा महा महारत्न है। इसको बोला रत्नाकर है, अनंत गुणों का पिंड है। अच्छा, अनंत गुणों का पिंड तो कहा ना, अब आत्मा के लिए ये नहीं कहा कि देखो भैया इतने तो गुण हैं आत्मा में, लेकिन एक दो अवगुण हैं, ऐसा कहा? कहा ऐसा? अरे भगवान ने तेरे में अवगुण देखे ही नहीं, भगवान ने तुझे अनंत गुणों का पिंड देखा है, भगवान ने तुझे अनंत रिद्धि से संपन्न महाप्रभु देखा है, चैतन्य रत्नाकर देखा है। तू अपने चैतन्य रत्नाकर को भूल करके राग की रचना में अटक गया, उसके लिए बहुत अच्छी बात कही थी कि चैतन्य रत्नाकर को देखकर चैतन्य का पुरुषार्थ प्रकट करे, सम्यक दर्शन प्रकट करे, सम्यक ज्ञान प्रकट करे, सम्यक चारित्र प्रकट करे, कहते हैं यह है पुरुषार्थ। और राग की रचना में रुक जाए, ख्याल में आया? कि राग की रचना में रुक जाए, इसका नाम है नपुंसकता, ये गुरुदेव ने बोला था। और उन्होंने उस समय वीर शक्ति को याद किया था, स्वरूप की स्वरूप रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। आप नक्की तो करो, 47 शक्तियां, उसमें आज गुरुदेव ने एक अकार्य कारण शक्ति को याद किया था। अकार्य कारण शक्ति का मतलब क्या? कि भगवान आत्मा कारण होकर के राग उसका कार्य हो, कि ऐसी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है, और भगवान आत्मा की निर्मल परिणति प्रकट कारण होकर के, माने वो राग कार्य हो, कारण होकर के भगवान आत्मा की निर्मल परिणति को प्रकट करे, यानी राग करते करते वितरागता आ जाए, राग करते करते मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ऐसा तीन काल में नहीं है। क्योंकि लोक में कहते हैं ना कि लसन खाते खाते कभी भी कस्तूरी की डकार ओडकार बोलते हैं ना गुजराती में, कि वो कभी नहीं आती। खाया हो लसन तो डकार किसकी आएगी? लसन की आएगी, है ना। तो राग करे और राग करते करते वीतरागता हो जाए, कहते ऐसा नहीं होगा। भगवान महावीर की वाणी में राग करने की बात आई नहीं, है ना। भजन में आता है ना, वीर प्रभु का है कहना, राग में जीव तू मत फंसना। क्या मतलब? कि अरे भाई, जिन वीर प्रभु ने स्वयं राग का अभाव किया हो, वे राग करने की प्रेरणा देंगे कि राग के अभाव की प्रेरणा देंगे? जरा विचार तो करो। और कैसा गजब है ये स्वरूप कि जिन गौतम गंधर्व और भगवान महावीर की आज अपन बात करते हैं, यदि हम उनका पुराना इतिहास उठा करके देखें जो पुराणों में वर्णित है, तो शायद अपन सोच नहीं सकते कि भगवान महावीर का जीव किन किन परिस्थितियों में से गुजरा है। कल बताया था थोड़ा, आदिनाथ भगवान की समोसरण में जो मारीची का जीव था, और जिसने भगवान महावीर भगवान आदिनाथ के साथ ही जो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, उनमें यह भी एक दीक्षार्थी था। 4000 राजाओं के साथ, आदिनाथ भगवान के साथ में इसने भी दीक्षा ली थी, है ना। भगवान आदिनाथ ने केवल अपने केवल ज्ञान में किसी प्रश्न के उत्तर में जब इनके 24वें तीर्थंकर होने की घोषणा की, तो इनको अभिमान आ गया। अच्छा, ये पहले तीर्थंकर होंगे और मैं 24वां। समोसरण से बाहर चले गए और उसी समय भगवान का विरोध चालू कर दिया और 363 प्रकार के पाखंड मतों की रचना इन जीव ने की है। मुझे कभी कभी विचार आता है, मैंने कहा महावीर भगवान अगर मुझसे मिले तो मैं महावीर भगवान से एक प्रश्न करूं कि प्रभु, आप तो 363 पाखंड मत चला गए और इन जंजाल को छोड़ करके मुक्ति में चले गए, और ये 363 पाखंड मतों की जंजाल हम लोगों के गले पड़ी है। बोलो अभी क्या करें। देखो जीव का स्वरूप, देखो आप कितनी बार वो जीव निगोद गया। क्यों? क्योंकि तीसरे काल में मोक्ष हो गया था आदिनाथ का, और इनको पंचम काल लगने के कुछ पहले मोक्ष जाना था। अब इतने काल कहां जाए, भगवान की वाणी उसी समय मान ले तो इतना संसार में रह नहीं सकता, और इतना संसार बाकी है तो भगवान की वाणी मानने का परिणाम आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें भगवान की वाणी मानने का परिणाम नहीं आवे, तो फिर किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु मेरा भविष्य क्या है। और भगवान की वाणी को स्वीकार करने का परिणाम आवे, अंतरंग से भगवान की वाणी के प्रति हमारी हां निकले, तो किसी केवल ज्ञानी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि भगवान मेरा मोक्ष कब होगा। गौतम गणधर के जीव का विचार करें, बहुत है इतिहास तो पढ़ना। गौतम गणधर के जीव का अगर अपन विचार करें तो कुछ भाव पहले गौतम गणधर का जीव एक राजा की पटरानी था, समझ में आ गया। और उनका जीवन पढ़ो कि एक अपने राजमहल के झरोके में चलता हुआ, झरोके से बाहर एक नाटक चलता हुआ नाटक उनने देखा और उनके परिणाम विकृत हो गए, और अपनी दो दासियों के साथ वो पटरानी का जीव जंगल में निकल करके राजपाट का त्याग करके चला गया, और अनेक प्रकार के कुकर्म किए उस जीव ने, अनेक प्रकार के कुकर्म, गतियों में भटका। गतियों में भटकने के बाद एक वो माने कुरूपवान, तीनों जीव कुरूपवान कन्याएं हुए, और कन्याएं होने के बाद एक मुनिराज का उपदेश चल रहा था, मुनिराज का उपदेश सुनकर के उनको चित्त में प्रसन्नता हुई। उसी समय उन 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 उस राजा का, उस रानी का पति माने राजा, वो भी समो वो भी वहां पर मुनिराज के उपदेश सुन रहा था। उस राजा ने कहा कि भगवान मुनिराज, इन तीनों कन्याओं को देख करके, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जो बिल्कुल सकल सूरत में मतलब राज परिवार में कहीं कुछ लगती नहीं है, कि इनको देख करके मेरे हृदय में स्नेह का भाव क्यों जागृत हो रहा है। तो फिर मुनिराज ने उनके पूर्वों का संबंध कहा, राजा को वैराग्य हो गया और उन्हें पश्चाताप हुआ, बाद में चल करके अगले भव में वो गौतम गणधर माने गौतम ब्राह्मण हुआ, और वो जो दो दो दासियां थी ना कि वो उसके भाई हुए, और उनको भगवान महावीर का फिर जैसा जैसा योग बना वो सबको ख्याल में है कि 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी। ये भी एक आश्चर्य, क्या आश्चर्य, अरे साहब केवल ज्ञान हो गया और 23 तीर्थंकरों के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। अपन लोग बोलते ना अरे साहब आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, अरे आज तक नहीं हुआ तो आज नहीं हो सकता, ये कैसे समझते हो। वो से लोग बोलते हैं अबे आज तक तो हमने ऐसा कभी किया नहीं, आज तक तो हमने ऐसा कभी किया नहीं। मैंने कहा आज तक तो तुम और हम मोक्ष में भी नहीं गए, तो अभी जाना कि नहीं जाना। तो ये घटना तो घटी कि 66 दिन तक केवल ज्ञान हो गया लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। इंद्र भी आश्चर्य में, सारी प्रजा में, तो उस प्रजा उस जो वो जो सभा थी, वो जो प्रजा थी समोसण में सुनने वाली, मैं तो उसको धन्यवाद देता हूं अपने यहां अभी कार्यक्रम रखे, एक दिन कार्यक्रम रखे और स्वाध्याय का कार्यक्रम है, स्वाध्याय नहीं हो गए, एक दिन आप आ जाओगे, दो दिन आ जाओगे, थोड़े हिम्मत वाले होंगे तीसरे दिन भी आएंगे, थोड़े और हिम्मत वाले होंगे चौथे दिन भी आएंगे, और पांचवें दिन तो कहेंगे कि रोज रोज यही काम है, घोषणा करते होता कुछ नहीं है। ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप उस सभा की कल्पना करो जरा कि 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी और 66 दिन तक लोग लगातार आते रहे, ठीक है। अब 66 दिन बाद इंद्र को विकल्प आया, भाई हो क्या गया, हो क्या गया, हो क्या गया। देखना इसमें गुरुदेव ने जितने सिद्धांत अपने को बताए सारे सिद्धांत सिद्ध होंगे अभी, कि हुआ क्या, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान लगाया तो ओ भगवान की समोसरण में भगवान की वाणी को झेलने वाला कोई पात्र जीव गणधर का जीव नहीं है, और गणधर होने की योग्यता जिस जीव में है वो अभिमान में छका पड़ा है। 500 गुरुओं का शिष्य, शिष्यों का गुरु, गजब हो गया, क्या करे। अब वो गया, अब हमारा एक प्रश्न, हम अगर अपन लोग होंगे तो क्या कहेंगे कि ए इंद्र महाराज तुमको अवधि ज्ञान था ना, पहले से नहीं था, था कि जिसको तुम 66 दिन बाद आज लाए हो कि ये किसी ये कहीं तुमने विदेश से आयात किया इसको कि इसी देश में था ये जीव। तो ये बताओ 66 दिन तक तुमने हमारा टाइम क्यों खराब किया, ये बताओ। 66 दिन पहले अगर आप जिस दिन ये केवल ज्ञान हुआ था भगवान को और वाणी नहीं खिरी थी, आपने उसी दिन ये काम क्यों नहीं किया, हमारे 66 दिन क्यों खराब किए। ये प्रश्न मैंने नहीं उठाया, सटखंडागम में और कषाय पाहुड़ में ये प्रश्न आचार्य वीरसेन स्वामी ने टीका करते हुए उठाया। उनने कहा, प्रश्न उठाया कि केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि कितने दिन नहीं खिरी, कि 66 दिन नहीं खिरी, कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं क्यों नहीं खिरी। तो उनने कहा कि गणधर का अभाव होने के कारण, कि इंद्र ने उसी समय गणधर को लाकर उपस्थित क्यों नहीं किया। तो उसका बहुत अच्छा उत्तर वीरसेन स्वामी ने दिया, उन्होंने कहा कि स्वकाल लब्धि के बिना इंद्र भी उससे पहले गणधर को उपस्थित करने में असमर्थ था। आ गया क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। भाई साहब हमको ऐसा लगता है, हमको क्या लगता है कि अगर यह काम 66 दिन पहले कर लेता तो इसका क्या बिगड़ता, हमको ऐसा लगता है। हालांकि वो जो 66 दिन तो निकल ही गए, ये सिर्फ हमारे विकल्पों के घोड़े हैं, अब कुछ नहीं हो सकता उनमें, जो 66 दिन निकल गए निकल गए। लेकिन अभी दूसरे एंगल से विचार करें कि 66 दिन तक क्यों नहीं लाया, कि 66 दिन तक पहले उन गौतम गणधर जिनको गणधर हुए ना, कि उनके श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुणों के पर्याय के क्रम का विचार करो, कि 66 दिन तक माने वहां से यहां तक, जिस दिन केवल ज्ञान हुआ वहां से गिन रहे हैं अपन, है ना, कि वहां से जब तक वो गणधर नहीं बने तब तक उनकी श्रद्धा की पर्याय में, उनके ज्ञान की पर्याय में, उनके चारित्र की पर्याय में मिथ्या दर्शन रूप पर्याय का क्रम था, मिथ्या ज्ञान की पर्याय का क्रम था, मिथ्या चरित्र की पर्याय का क्रम था, और वो क्रम लगातार केवल ज्ञान हुआ तब से, उसके पहले से भी था लेकिन अपन केवल ज्ञान से गणना कर रहे हैं, वहां से लेकर 66 दिन तक उनकी पर्याय में एक भी पर्याय का क्रम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र रूप होने का नहीं था। आप इस एंगल से क्यों नहीं सोचते हैं? अपने विकल्पों के आधार से हम सोचते हैं लेकिन उनकी पर्यायों के क्रम के आधार पर क्यों नहीं सोचते? एक बात। दूसरी बात कि जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक भाषा वर्गणा के परमाणु में, किसी परमाणु में ऐसी योग्यता नहीं थी कि भगवान की दिव्य ध्वनि रूप परिणमन करने की योग्यता विश्व की किसी भाषा वर्गणा में हो। 66 दिन तक वो पर्याय का क्रम, वो पर्याय नहीं होनी थी उसमें, उसका परिणमन स्वतंत्र है ना। इंद्र के अवधि, इंद्र के ज्ञान गुण की पर्याय है, इंद्र को प्रति समय ज्ञान गुण की पर्याय है, लेकिन इंद्र इस विषय पे, इस विषय से संबंधित अवधि ज्ञान लगाने का क्रम 66 दिन तक नहीं था। उसकी ज्ञान गुण की पर्याय का भी तो क्रम चल रहा है ना, तो उसी ज्ञान गुण की पर्याय में अवधि ज्ञान लगाने का क्रम नहीं था। एक लास्ट बात, अनंत बहुत सारे जो भगवान के समोसरण में जीव आए थे, उन अनंत जीवों की, उन बहुत सारे जीवों की जो जो जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने आए थे, कि उन भगवान के समोसरण में आए हुए जीवों के ज्ञान गुण के परिणमन में भगवान की दिव्य ध्वनि ज्ञान का गेय बने, ऐसी उनकी पर्याय का क्रम ही नहीं था। 66 दिन बाद भगवान की दिव्य ध्वनि ज्ञान का गेय बने, उस ज्ञान पर्याय में, क्योंकि देखो एक चीज समझना कि जिस तरह प्रति समय की ज्ञान पर्याय निश्चित है, प्रति समय ज्ञान पर्याय का उत्पाद होता है, उसी तरह उस ज्ञान पर्याय में क्या गेय बनेगा, उस ज्ञान पर्याय में क्या जानने में आएगा, कि वो भी उस ज्ञान पर्याय की उत्पत्ति के साथ ही नक्की है। तुम करने की बात तो छोड़ो, जानना भी उस जानने की पर्याय की योग्यता अनुसार होता है। ये जो गुरुदेव श्री ने अपन लोगों को अनंत प्रश्नों का एक समाधान जो दिया कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसी ही उस समय की योग्यता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, कि ऐसी ही उस समय की योग्यता, ये बात कोई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के हिसाब से नहीं कहा है। या जब कोई उत्तर नहीं आता हो ना, योग्यता है, ऐसी योग्यता है, भाई साहब ये ऐसा नहीं है, ये वास्तव में वस्तु स्वभाव की मर्यादा है। और कैसी मर्यादा है, कि ये ऐसी वस्तु स्वभाव की अचलित मर्यादा है कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। मैं कहता हूं 66 दिन तक जो केवल ज्ञान नहीं खिरना था नहीं खिरा, 66 दिन तक इंद्र ने अवधि ज्ञान नहीं लगाया नहीं लगाया, 66 दिन तक गणधर नहीं आए नहीं आए, 66 दिन तक लोगों के कान में दिव्य ध्वनि नहीं पड़ी नहीं पड़ी, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये विकल्प भी तो हम 66 दिन पहले ही कर रहे हैं ना, 66 दिन के बाद ही कर रहे हैं ना है? हमें क्यों, मैं अब ये पूछता हूं कि अपन ये कहते हैं कि इंद्र ने अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगाया, तो हमारा प्रश्न ये कि तुमने उसी दिन इंद्र को सलाह क्यों नहीं दी? समझ में आया कि नहीं? विचार तो करो जरा कि तुम आज सलाह दे रहे हो, और वो भी कब, कि जब गणधर आ गए और बढ़िया वाणी सुनने का योग मिल गया, अब वाणी तो सुन नहीं रहे, और 66 दिन तक जो वाणी नहीं खिरी उसका रोना रो रहे हो, तो वो इंद्र कहता है कि भाई साहब चलो मुझे याद नहीं आया, कोई बात नहीं आपको तो याद आया ना, तो ये 66 दिन पहले आपको क्यों नहीं याद आया, बताओ जरा मुझे। क्या उत्तर है? एक ही उत्तर है जो गुरुदेव श्री ने अपने को दिया, क्या, कि अनंत प्रश्नों का एक समाधान, और उसका नाम है योग्यतावाद। वास्तव में गुरुदेव की योग्यता ने हमारे माथे से कर्तत्व का वो बोझा उतारा है, हमें अकर्ता गैक स्वभाव की वो मंगलमय दृष्टि दी है, जिसके लिए पंचम काल के अंत तक हम लोग गुरुदेव श्री का गुणगान गाते रहेंगे। सच्चाई है ये। बताओ आप किसने, कौन है ये बात कहने वाला? तत्समय की योग्यता, क्रमबद्ध पर्याय, ऐसे गजब गजब के सिद्धांत कि हमारे अंदर में कर्तृत्व के विष को पनपने नहीं दे। नक्की करो। मैं तो कई बार कई उदाहरणों से चर्चा करता हूं कि ये सारे सिद्धांत घटित होते हैं। आदिनाथ भगवान ने, नेमिनाथ भगवान ने कह दिया बाहुबली दीपायन मुनि के निमिष से द्वारिका जलेगी, सब कह दिया, 12 साल बाद जलेगी। पूछा, अब 12 साल, उन्होंने कहा दीपायन मुनि के द्वारा, अभी अभी क्या हुआ, हुआ क्या? मैंने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है योग्यतावाद के, क्रमबद्ध पर्याय, सैकड़ों उदाहरण के वो दीपायन भी चले गए। मैं द्वारिका में रहूंगा ही नहीं, मैं जब द्वारिका में रहूंगा नहीं तो जलेगी कैसे? मैंने भगवान की वाणी पे भरोसा तो था, पूरा नहीं था, क्योंकि अगर भरोसा होता तो वहीं टिके रहते, और नहीं होता तो छोड़ के भी नहीं जाते। उन्होंने लगा हो सकता है भाई, भगवान कह रहे तो हो गए। और 12 वर्ष में वो जो तीन साल में एक महीना अधिक होता है ना, वो गणना भूल गए और 12 वर्ष के पहले आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि भाई साहब द्वारिका में जलने की योग्यता तत्समय की पर्याय रूप योग्यता थी, और उसी समय 12 वर्ष के काल में, उसी समय जिस समय इधर द्वारिका जलने की योग्यता थी, उसी समय द्वीपायन में निमित्त पने की योग्यता थी। निमित्त पने की योग्यता भी सदा नहीं होती, इधर उपादान में कार्य रूप होने की योग्यता होती है, उधर जिस पदार्थ को निमित्त होना हो उसमें उस समय ही उसमें निमित्त होने की योग्यता होती है। मेरा प्रश्न ये कि दीपायन मुनि को द्वारिका छोड़ने का विकल्प आया, सोचना जरा। क्यों जी, नेमिनाथ ने तो यह कहा था ना कि दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी, ठीक है, तो दीपायन मुनि को यह विकल्प क्यों नहीं आया कि चलो जी दीपायन आज से कपड़े पहनता है? नहीं आया समझ में? क्योंकि क्या कहा था, दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी, तो दीपायन को यह विकल्प क्यों नहीं आया कि द्वीपायन आज से कपड़े पहनता है और कसम खाता है इस जिंदगी में कभी कपड़े का त्याग करके मुनि दशा अंगीकार नहीं करेगा, न होता द्वीपायन मुनि न जलती द्वारिका, ऐसा विकल्प क्यों नहीं आया? नक्की तो करो जरा। देखो होने योग्य के मतलब जिस तरह कार्य होना होता है विकल्प भी उसी के अनुरूप आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। ये जो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का शंखनाद भगवान महावीर ने दिया, चैतन्य तत्व की जिस दुर्लभता की बात उन्होंने बताई कि कैसा तेरा मान तत्व, अनंत गुणों का पिंड है ना, 47 शक्तियां तो अमृतचंद्र आचार्य ने निकाली, कहा तो उन्होंने अनंत शक्तियां हैं, तो भगवान अनंत शक्तियां कौन सी है, तो अनंत शक्तियों के नाम थोड़ी बता सकते हैं कि साहब कुछ तो बताओ, तो कुछ बताओ उसमें 47 शक्तियां उन्होंने निकाली और कहा कि ऐसी ऐसी अनंत शक्तियां हैं। गुरुदेव श्री ने 47 शक्तियों पे बहुत बार प्रवचन किए, और गुरुदेव श्री का तो दैनिक सुबह और शाम उठते के साथ ही जो 175 बातें होती थी ना उनकी चिंतन की, उनमें 47 शक्तियां अर्थ सहित, और सोते समय भी वो चिंतन करते थे। और गुरुदेव श्री का स्वाध्याय बहुत गजब का, माने कितना स्वाध्यायमय उनका जीवन, उन्होंने कुछ ग्रंथों के आधार से 53 शक्तियां और निकाल के दी। यह आप पढ़ना, अध्यात्म प्रणेता ग्रंथ है, एक बुक है, उसमें गुरुदेव ने 53 शक्तियां निकाली, और उन 53 शक्तियों में से 33 शक्तियों पर गुरुदेव ने संक्षिप्त में प्रवचन किए, यह आपको शायद पता हो नहीं हो। और वो प्रवचन सदगुरु प्रवचन प्रसाद हस्तलिखित दैनिक जो निकलता था 1950 से 1956 तक जो निकला है उनमें वो प्रवचन छपे। आप विचार तो करो कि कहां कहां से। अब ऐसे जो ये जो वो जो चैतन्य की महिमा है, आज चैतन्य की महिमा का फल भगवान को प्राप्त हुआ, और भगवान को वो फल प्राप्त होते देखकर जैसे किसी को पुरस्कार मिले तो अपने में भी उत्साह जागृत हो जाता है, अरे ये काम तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा पुरस्कार तो हमको भी मिल सकता है, ऐसी भावना आती कि नहीं आती। तो आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मनाने के साथ ही, भगवान महावीर का, गौतम गणधर का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के साथ ही, अपने अंदर में भी ये भावना बलवती होना चाहिए कि अरे जो काम भगवान महावीर ने किया, जो काम गौतम गणधर भगवान ने किया, वो कार्य करने की सामर्थ्य तो हमारे पास भी है। क्यों? क्योंकि उनके और हमारे आत्मा में कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं। वो चर्चा अपनी चल रही थी। आ जाओ अपने कलश पे। आ गया ना कि भाई उनमें मेरे में क्या अंतर है? अरे नहीं 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 नहीं, कहां भगवान महावीर और कहां मैं? कि तुम भगवान महावीर और मैं की बात कर रहे हो, यहां तो आचार्य भगवान कहते हैं निगोदिया में और सिद्ध में कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये कुबुद्धि और सुबुद्धि, निगोदिया और सिद्ध, ये नहीं दिखता। मुझे तो उनका द्रव्य स्वभाव दिखता है। जब द्रव्य स्वभाव को देखता हूं तो मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता, और पर्याय स्वभाव को देख, पर्याय को भी देखता हूं तो दोनों की पर्याय तो एक समय में बदल जाने वाली है। सिद्ध दशा की पर्याय हो तो भी एक समय की है, अगले समय नई सिद्ध दशा, और निगोद की दशा हो तो भी वो क्या है, एक समय की है, अगले समय नई दशा। जिसका जीवन एक समय का है ना, जिसकी अवस्थिति एक समय की है, वो मेरे लिए वजन देने लायक कैसे हो सकती है? वजनी तत्व तो वो है कि अवस्थाएं बदल गई, परिणाम परिणम गया और मैं यों का यों रह गया। वजन देने लायक चीज तो वो है। आए ना, यहां अपनी कल चर्चा चली थी, देखो आ गया। इसमें गुरुदेव श्री ने जब ये बात कही थी उनने कि कुछ भी भेद किस नए से देखूं, तो उन्होंने व्यवहार नहीं की, तुच्छता की बात करी थी। अरे प्रभु, ये पेज नंबर अपना इसमें है, देख लीजिए, ये जो कारण कार्य नियम का 263 पेज है, इस पैराग्राफ में अंतर है। ये बीच का पैराग्राफ है, ये तेमनामा कायपण भेद, इसमें है, अरे प्रभु तारा मां अने सिद्ध मां कई नयति भेद करूं। किससे तुलना कर रहे हैं? सिद्ध भगवान से। भगवान महावीर ने जो पद आज प्राप्त किया उस पद से हमारी तुलना कर रहे हैं। क्या चीज है? कि वो द्रव्य स्वभाव है, पर्याय में अंतर हो, वो तो एक समय की स्थिति वाला है, वो तो मिटने वाला है, वो तो टिकने वाला नहीं है। जो मिटने वाला है, जो टिकने वाला नहीं है, समझ में आया? जो मिटने वाला है, जो टिकने वाला नहीं है, हम उस पर वजन दे रहे हैं, और जो टिकने वाला है, कभी मिटने वाला नहीं है, उस ओर हमारा लक्ष्य ही नहीं जा रहा है। लक्ष्य उधर जाना चाहिए भैया, ये तो बदल जाएगा, ये तो परिवर्तनशील पर्याय है। अभी सिद्ध दशा अभी नहीं है, अभी सिद्ध दशा हो जाएगी। अभी मिथ्या दर्शन है, अगले समय में सम्य दर्शन हो सकता है। अभी मुनिराज है ना, आता है ना उदाहरण, राजा सैनिक जब एक बार धर्म सभा में जा रहे थे, भगवान महावीर की धर्म सभा में, तो रास्ते में एक मुनिराज को उन्होंने नमस्कार करते कर किया, मिले तो नमस्कार किया, तो उनकी मुख मुद्रा कुछ मलिन थी, गुस्सा आ रहा था उनको थोड़ा सा। गुस्सा क्यों आ रहा था? कि वो जो उन्होंने जो दीक्षा ली थी, श्वेतवान ऐसा कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने जो दीक्षा ली, तो उन्होंने अपने छोटे से बालक को राज तिलक करके दीक्षा ले ली। और आज बहुत वर्षों के बाद वो उसी नगर में, जिस नगर के राजा थे, वहां आर के लिए गए, तो लोगों ने कहा, लोग बातें कर रहे थे कि ये कैसा राजा है, कैसा स्वार्थी है, कि छोटे से बालक को राज तिलक करके दीक्षा ले ली, अपनी आत्मा का कल्याण करने की बातें करता है, और उस बालक को बालक समझ करके मंत्रियों ने सारा राज्य अपने हिसाब से बांट लिया है, और अपने हिसाब से उसका उपभोग कर रहे हैं, जनता परेशान है, इनको कुछ पड़ी नहीं है, ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे। तो एकदम उन मुनिराज का परिणाम थोड़ा विकृत हो गया। यद्यपि वो जंगल में आ गए, लेकिन जंगल में आने पर भी अभी थोड़ा सा उनके परिणाम में वो बात चलती रही। उधर राजा सैनिक नमस्कार करते हुए निकले, तो गौतम गणधर से जाकर के उन्होंने पूछा कि प्रभु एक मुनिराज मैंने जंगल में देखे, लेकिन उनकी चेहरे का हाव भाव देख करके मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ। तो गौतम गणधर ने कहा कि राजन, वे मुनिराज तुम उनको जाकर के अभी संबोधन करो, तुम जाकर के क्या करो कि उनको जाकर के संबोधन करो, तुम्हारे संबोधन से वो प्रतिबोध को प्राप्त होंगे, और यदि वो प्रतिबोध को प्राप्त नहीं हुए तो थोड़ी देर बाद सातवीं नरक के आयु के बंध के योग्य हो जाएंगे। क्या कोई कोई परिणाम आता है ना, तो ऐसा कोई परिणाम आ गया तो एकदम मुनिपना नहीं गया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर काल तक उस तरह का परिणाम चलता रहे तो मुनिपना खत्म हो जाता है ना। राजा सैनिक आए और आकर के उनने कुछ कहा होगा, कुछ भी हुआ होगा, और इतने में देखा तो देवता लोग उनके केवल ज्ञान कल्याण यानी केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए आ रहे। क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जिनको कसाई के परिणाम देखे, थोड़ी देर बाद उन्हीं जीव को वापस आत्म साधना का परिणाम आया, उस कसाई के परिणाम को उन्होंने तिलांजलि दी, आत्म साधना का परिणाम आया। अरे आत्म साधना का परिणाम ही नहीं आया, आत्म साधना के फल में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, जिनके लिए गणधर भगवान ने कहा कि यदि ये परिणाम, क्योंकि गणधर भगवान तो केवल ज्ञानी होते नहीं, तो उनकी जितनी, तो उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के परिणाम उनके और इतने काल तक चलते रहे तो सातवीं नरक के बंध के योग्य हो जाएंगे। वे ही जीव संबोधन करने पर, आत्म साधना में लगने पर वापस केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अब जो पर्याय की तो यह स्थिति है, थोड़ी देर पहले का पापी थोड़ी देर बाद का परमात्मा बन सकता है। अंजन चोर का उदाहरण आता है, आठ दिन के अंदर सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की साधना की किसने, उस अंजन चोर ने, जिसके बराबर पाप इस पंचम काल में जन्मा हुआ कोई जीव नहीं कर सकता। बोलो, आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, आकाशगामिनी विद्या, वो सारी घटनाएं पढ़ना। नहीं, ये पुराण पुरुषा, ये जो पुराण प्रसंग है कि ये पुराण प्रसंग अपने को क्या बताते हैं कि ये उसी चैतन्य की महिमा तो अपने को बताते हैं ना, कि देखो पर्याय में कितना उलट फेर हुआ, कहां विकृत से विकृत पर्याय और कहां निर्मल से निर्मल पर्याय। चैतन्य का क्या हुआ, चैतन्य तो उस विकृत पर्याय के समय भी निर्मल था, क्योंकि अगर उस विकृत पर्याय के समय वो निर्मल नहीं होता तो उस चैतन्य की दृष्टि करके निर्मलता का परिणमन कहां से आया, है ना। तो ये जो धूप छाया की तरह पर्याय बदलती है कि हम इस पर्याय को देखते ही नहीं, और जिस द्रव्य स्वभाव को हम देखते हैं तो हमें सिद्ध में और निगोदिया में, सिद्ध में और संसारी में, केवल ज्ञानी में और मति ज्ञानी में, है ना, हमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। किस नय से भेद देखूं, क्यों, क्योंकि सिद्ध दशा और निगोद दशा, सिद्ध दशा और संसारी दशा, है ना, साधक दशा और साध्य दशा, के ये सब व्यवहार नय का विषय है। इसलिए व्यवहार नय को तो कुछ गिनती में ही नहीं लिया। फिर कहा, जे सुबुद्धियों तेमज कुबुद्धियों ने प्रथम तीज शुद्धता छे तेम नामा काई पण भेद हूं क्या नैति जानू एमा क्या नैति भेद जानू के आ संसारी अने आ सिद्ध। मैं किस नय से देखूं ये, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो स्वभाव को देखने वाला नय है। देखना ध्यान से सुनना क्या कहा, कि मेरे पास तो स्वभाव को देखने वाला नय है, और जब स्वभाव को देखने वाले नय से मैं देखता हूं तो मुझे स्वभाव दिखता है, भेद नहीं दिखता। तो मैं अब किस नय से भेद देखूं, गजब बात है। ये वाक्य तो गुरुदेव का कितनी बार आया होगा प्रवचन में, गजब बात है ना। फिर आगे कहा, मुनियों की वाणी, देखो कितनी एक एक प्रवचन में वीतरागी संतों की कैसी महिमा गुरुदेव के प्रवचन में उछलती है। मुनियों की वाणी, संतों की, दिगंबर संतों की वाणी, जगत एनी पासे बदा पानी भरे आया, सारा जगत पानी भरे। दिगंबर संतों की वाणी, ऐसी वाणी किसी की कहने की हिम्मत नहीं है, है किसी की कहने की हिम्मत हाँ? ये बात कोई कह सकता है कि कैसे अंतर देखूं? अभी तो हम छोटी छोटी बातों में अंतर करते हैं, छोटी छोटी बात में ऐसा। वो कहते स्वभाव को देख तुझे अंतर दिखाई देता है ना। फिर कहते हैं, आहा, व्यवहार नयनी तो जाने गणतरी ज नथी, एम कहू, गिनाई नहीं उसको तो कुछ, व्यवहार ने अरे ठीक है व्यवहार रख। जैसे कोई आदमी हो ना, लोक में भी किसकी बात पर वजन देते हैं अपन, बोलो अभी कुछ कहा, 15 मिनट बाद कुछ कहा, आधे घंटे बाद कुछ कहा, 1 घंटे बाद कुछ कहा, उसके 15 मिनट बाद फिर कुछ कहा, एक तो उस आदमी की बात पर, और एक वो कि अगर जागते में उसने कुछ कहा है तो झकझोर के नींद में जगाओगे तो भी वही कहेगा। आ गया? अब अपन कहें भाई ऐसा ऐसा हमने सुना है कि किसने कहा, अपना प्रश्न क्या होता है, किसने कहा, उसने कहा, ठीक जा अपना काम कर। क्या मतलब काम कर, क्या मतलब क्या कि अरे भैया उसने कहा ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, अभी तुम 2 मिनट बाद जाके पूछोगे तो कहेगा मैंने कब कहा, है ना, कहा। तो ये व्यवहार नहीं तो ऐसा है, ये तो दल बदलू है, ये तो अपना पाला बदलता रहता है। और एक ये शुद्ध नए कि कभी अपना पक्ष बदलता नहीं है, त्रिकाली स्वभाव को विषय किया तो अनादि अनंत उस त्रिकाली स्वभाव को विषय करता रहता है। क्यों? क्योंकि जिसको उसने विषय किया वो अनादि अनंत वैसा ही है। इसलिए इस शुद्ध नय का कथन, शुद्ध नय का जो कि विषय वस्तु ये कभी नहीं बदलती, तो वजन हम किस पे देते हैं? अरे उनने कहा, ओ भैया उनने कहा तो हमें सोचना पड़ेगा, वो ऐसा गंभीर व्यक्ति है कि उसने अगर कहा है तो जरूर इस बात में दम है। आ गया? बात बात में बदलने वाले, बार बार बदलने वाले की बात में लोक में भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये व्यवहार ने तो बार बार, ये तो जैसे जैसे पर्याय बदली, जो जो पर्याय बदली उस पर्याय को विषय करेगा। न्याय समझ, देखो वो व्यक्ति को बदलने में तो 5 मिनट तो लगते होंगे कम से कम, नहीं लगते होंगे कि 5 मिनट तो कम से कम अपनी बात पे कायम रहता होगा वो, ये व्यवहार नहीं कि ये व्यवहार नहीं तो भाई साहब अगले समय अपनी बात बदलता है, क्योंकि पर्याय बदली और ये बदला, तो ये तो एक एक समय में अपनी बात बदलता है, तो एक एक समय में बदलने वाले पर अपने को वजन देना या नहीं, कभी नहीं बदलने वाले पर अपने को वजन देना, इतना विवेक तो करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए कहा कि व्यवहार की कुछ गिनती नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि व्यवहार की कुछ गिनती नहीं है, ये कहकर के हमको ऐसा लगता है कि इन लोगों को व्यवहार से थोड़ा द्वेष है। मैंने कहा भाई द्वेष नहीं है, कोई ये कहे कि साहब तुम चीनी को ही मीठा मीठा कहते हो, चीनी को मीठा कहते हो, लेकिन नमक भी तो चीनी जैसा ही होता है, नहीं होता कि नमक भी जब चीनी जैसा होता है तो तुमको नमक से द्वेष है, अरे जरा कभी कभी उसकी भी तारीफ कर दिया करो, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, आप कभी कभी उसकी भी तारीफ कर दिया करो, कि वो तारीफ होगी कि चापलूसी होगी, नमक की तारीफ होगी वो, कि नमक का जो स्वरूप नहीं है तुम वो नमक का स्वरूप बता रहे हो, वो नमक की तारीफ है, कि व्यवहार नहीं तो वही कहता है कि जो शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है, क्या कहा, क्यों नहीं है स्वरूप, कि अगले समय बदल गया ना, तो जो बदल गया वो स्वरूप कैसा, जो बदल गया वो स्वरूप कैसा, और जो स्वरूप हो वो बदलेगा कैसे, व्यवहार नहीं किसको कहता है कि जो बदल गया उसको कहता है, हम इसलिए उसकी बात पे वजन नहीं देते, हमें व्यवहार नहीं से द्वेष नहीं है। अरे हम व्यवहार नहीं का सही परिचय तो दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं कि व्यवहार नहीं की बात पर वजन देने लायक नहीं है, यही उसका सही परिचय है। भैया इस बात, इसकी बात पर ध्यान मत देना, क्यों मत देना कि इसका दिमाग थोड़ा फिरा हुआ है, बोलते कि नहीं बोलते अपन लोग, तो अपन ने उसके प्रति द्वेष किया या वास्तविकता से परिचय कराया, वास्तविकता से परिचय कराया ना, वह यही बात व्यवहार नहीं के ऊपर है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि एम कहो कि जाने गणतरी ज नथी, ऐसा लगता है लोगों को अरे साहब बड़ा द्वेष है इन सोनगढ़ वालों को, व्यवहार से बड़ा द्वेष है, अरे व्यवहार से द्वेष नहीं है, व्यवहार को संजीवनी बूटी ही हम लोगों ने दी है, हमारे गुरुदेव ने दी है, नहीं तो लोग व्यवहार को निश्चय मानते थे, व्यवहार को व्यवहार माना तो उन्होंने व्यवहार को जीवन दिया, व्यवहार को व्यवहार के स्थान पर रखा। एम कहू आहा प्रभु परमात्मा छने सिद्ध अने परमात्मा क्या नयती भेद कहू, आहा व्यवहार नयती कहेवू ये तो उड़ावी दीदू, मस्करी करी, मजाक उड़ाई, मखोल उड़ाई इसकी तो। हा हा हा, ये अंदर आवे छे, व्यवहार नहीं मस्करी करी छे। बताया था ना कल, आलोचना अधिकार में आता ही है। नियम सार में पाछल आवे छे, हास्य करू छे, हास्य। ये गुरुदेव के शब्द पढ़ रहा हूं मैं आपको, पूरा करता हूं। अरे प्रभु, परंतु तू पूर्णानंदनो नाथ छेने, नाथ तारी सत्ता पूर्ण अनादिति छे, एमा काई फेरफार थयो ज नथी। बोलो किस पे भजन देने का? अभी तारी नजर जती नथी, नजर करे तो तू अने सिद्ध बने एकज छो। तेरी नजर नहीं जाती इसलिए तुझे अंतर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी नजर उस शुद्धात्मा पर गई तब वो अंदर से बोलते हैं कि शुद्धात्मा में और सिद्ध में कोई नए से भेद जानू। आ हा हा, नजर ना पुरुषार्थमा आखो भगवान देखाई छे, अही तो मुनिराज कहे छे क्या नई थी जानू, तेम नामा खरे फर काई पण भेद। आहा, गजब बात छे प्रभु, भाषा भले थोड़ी हो। इतना कहकर के बात उनने पूरी की कि भाषा भले थोड़े हो, बात बहुत गजब है। दो लाइन का कलश है लेकिन दो लाइन के कलश में वो मर्म है कि जिस मर्म को अगर हम झेल लें तो अनंत काल का संसार चक्र हमारा मिटे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि ये भेद मानना ही भेद का कारण है, और भेद जिस दिन दिखना बंद हो जाएगा, जिस दिन भेद दिखना बंद हो जाएगा उस दिन भेद रहना भी मिट जाएगा, भेद भी मिट जाएगा। ये एक पद्धति है शेष चर्चा बात में।
एक
पांचवी
भैया भगवती दास द्वारा जे आपणे जिनेन्द्र पूजा संग्रह में 289 पेज पर निर्वाण कांड भाषा से तेनो अहीं ऑडियो प्रसारण थशे, दरेके लाभ लेवा बेसवा विनंती छे, पछी आवतीकालनो कार्यक्रम जाहेर करशो। चालू कीजिए।
वीतरागवंदो सदा भाव सहित सिरनाय, कहूं कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाय। अष्टापद आदीश्वर स्वामी वासुपूज चंपापुरी नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उर्धार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुरी स्वामी महावीर, शिखर समेत जिने सुरबीत भाव सहित बंदो निषदीत। वरदत्त रायरु इंद मुनिंद सायर दत्त आदि गुण वृंद, नगर तारवर मुनि हुंठ कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोड़ी। श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अरु 107, शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाय अनिरुद्ध आदि नमो तसु पाय। रामचंद्र के सुत द्वैवीर लाड नरिंद आदि गुण धीर, पांच कोड़ी मुनि मुक्ति मंजार पावागढ़ बंदों निर्धार पांडव तीन द्रविण राजान आठ कोड़ी मुनि मुकति पयान श्री शत्रुंजय गिरि के शीश भाव सहित बंदों निषदीत जे बलभद्र मुकति में गए आठ कोड़ी मुनि और हूँ भये श्री गजपंथ शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो तिहुं काल राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाख्य नील महानील कोड़ी निन्याणव मुक्ति पयान तुंगी गिरि वंदों धरि ध्यान नंग अनंग कुमार सुजान पांच कोड़ी अरु अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरिशीष ते बंदों त्रिभुवन पति रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तट सार कोटि पंच अरु लाख पचास ते बंदों धरि परम हुलास रेवा नदी सिद्ध वर कूट पश्चिम दिशा देह जहाँ छूट द्वैचक्री दश काम कुमार ऊंठ कोड़ी वंदों भव पार बड़वानी बड़ नगर सुचंग दक्षिण दिश गिरि चूल उतंग इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर्ण ते बंदों भव सागर तरुण सुवरण भद्र आदि मुनि चार पावागिरिवर शिखर मंझार चेलना नदी तीर के पास मुक्ति गए बंदों नित तास फल होड़ी बड़ गाम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिर रूप गुरु दत्तादि मुनीश्वर जहां मुक्ति गए बंदों नित तहां बाली महाबाली मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय श्री अष्टापद मुक्ति मंझार ते बंदों नित सुरत संहार अचलापुर की दिशाई सान तहां मेण गिरि नाम प्रधान साढ़े तीन कोड़ी मुनिराय तिनके चरण नमो चित लाय स्थल वन के भिग होए पश्चिम दिशा कुंथ गिर सोए कुलभूषण देश भूषण नाम तिनके चरणनि करूं प्रणाम। जसरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग पांच सौ लहे कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जोरी जुगपान। समव शरण श्री पार्श्व जिनंद रे सिंधी गिरि नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते बंदों नित धर्म जिहाज। मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण चर्म केवली पंचम काल ते बंदों नित दीन दयाल। तीन लोक के तीरथ जहां नित प्रतिवंदन की जय तहां मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करही भाविक गुण गाय। संवत सत्रह सौ इकताल आश्विन सुदी दशमी सुविशाल भया वंदन करही त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल।
રાત્રિનો કાર્યક્રમ રાત્રે 7 થી 7:30 જિનેન્દ્ર ભક્તિ તથા આરતી અને 8 થી 9 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું સીડી પ્રવચન આજે રાત્રે દેવેન્દ્ર કુમારજીનું સ્વાધ્યાય નથી. આવતીકાલ સવારનો કાર્યક્રમ સવારે 7:45 થી 8